शांति। जो व्यक्ति मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख हानि लाभ सब में समान रह सकता है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। उसी के पास आत्मा की अनुभूति है। अगर मान लेने पर हमारी खुशी बढ़ जाती है और अपमान मिलने पर खुशी खत्म हो जाती है, लाभ मिलने पर हम दुखी महसूस करते हैं और हानि होने पर हम दुखी हो जाते हैं, तो ये वास्तव में योगी की स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा निश्चय करता है, परमात्मा से योगयुक्त तो होता है, उनसे ही सच्ची प्रीत रखता है और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान व्यतीत करता है, देवत्व स्थिति की ओर अग्रसर होता है, तो वह इस संसार में रहते हुए भी एक न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करेगा और सदा हर परिस्थिति में वो हर्षित रहेगा। हर्षित रहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर्षित हम कैसे रह सकते हैं? खासकर इस कलयुगी दुनिया में, जबकि कदम कदम पर हमारे सामने कई परीक्षाएं आती है, विघ्न आते हैं, तो हमारे हर्षित मुख स्थिति को वो नष्ट करने लिए ही आगे आते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में होते हुए भी हम हर्षित रह सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात, हर्षित मुख रहने के लिए अपने मन को हंस के समान बनाना होगा। जिस प्रकार हंस सदा मोती चुगता है और कंकड़ या पत्थर फेंक देता है, क्षीर और नीर दोनों को वो अलग कर सकता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर परख शक्ति है, जिस व्यक्ति में श्रेष्ठ संकल्प करने का एक लक्ष्य है, आत्म उन्नति का एक लक्ष्य है, तो वह सबसे गुण ही ग्रहण करेगा। क्योंकि दुनिया में अवगुण तो बहुत हैं, हर एक व्यक्ति में अनेक अवगुण हैं, लेकिन हजारों अवगुण होते हुए भी कम से कम एक गुण तो जरूर होगा ही, क्योंकि वही ईश्वर की रचना है और परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, इसकी हम रचना है और हमारे लिए एक भी गुण न हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम किसी के गुणों तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत से गुण दिखाई देंगे, लेकिन आज की दुनिया में लोग गुणों तरफ कम ध्यान देते हैं, अवगुणों के तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अवगुणों की तरफ ध्यान देना अर्थात नेगेटिव सोचना और गुणों की तरफ ध्यान देना अर्थात पॉजिटिव सोचना। तो पॉजिटिव सोचने में शक्ति चाहिए, समय चाहिए, वैसी दृष्टि चाहिए, लेकिन नेगेटिव सोचना बहुत सहज है। नेगेटिव सोचने में मेहनत नहीं लगती, जैसे गिरने में मेहनत नहीं लगती लेकिन चढ़ने में मेहनत लगती है, इसी प्रकार पॉजिटिव सोचने में मेहनत लगती है, उसके लिए शुद्ध चिंतन करना पड़ता है, आत्म अनुभूति करनी पड़ती है, दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखना पड़ता है, तब हमारे मन में उसके प्रति शुभ विचार उत्पन्न हो सकेंगे। तो जब हम योगी स्थिति का अनुभव करते हैं तो खास यह लक्ष्य रखते हैं कि हम उनकी आत्मा को देखें। आत्मा वास्तव में बहुत पवित्र है, आत्मा बहुत शुद्ध है। तो ये अगर हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके गुण हम देख पाएंगे। लेकिन सदा ही हम अपने भी गुणों और अवगुणों की परख रखें। कई बार हम दूसरों के अवगुण देखते हैं और खुद को तो बहुत ही गुणवान समझते हैं कि मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसी पर याद आता है कि चार प्रकार की वृत्तियां मनुष्य के अंदर होती है। हर एक लिए कोई न कोई उनमें से एक वृत्ति तो होगी ही। एक वो प्रकार के लोग हैं जो सारा दिन इतना तो नेगेटिव सोचते हैं, केवल अन्य के बारे में ही नेगेटिव नहीं सोचते लेकिन खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि इस संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं, ये संसार में बुरा, व्यक्ति भी बुरे, भगवान भी बुरा, सब कुछ बुरा ही बुरा है इस जगत में। और वह दिन भर अपने आप को कोसता ही रहता है, अपने कर्मों को भी कोसेगा तो दूसरों के कर्मों को भी कोसता रहेगा, खुद भी अशांत रहेगा और अन्य को भी अशांत करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति भी हम संसार में देखते हैं, जो अपने लिए भी नेगेटिव सोचते हैं तो दूसरों के लिए भी नेगेटिव ही सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी को भी कभी पसंद नहीं आएगा, हर एक उस व्यक्ति से दूर होने की ही कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे ही इस प्रकार के व्यक्ति के सामने जाएंगे तो दुख की ही अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति तो होती ही नहीं है। अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपनी तो बहुत निंदा करेंगे लेकिन औरों की निंदा करेंगे, जैसे कि वही सबसे अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे और किसी के बारे में अगर बात भी करेंगे तो उसके विषय में अवगुण ही वर्णन करेगा वो व्यक्ति, उसकी बुराई ही करेगा, उसकी निंदा ही करेगा, उसके विषय में बुरा भला ही कहेगा और खुद की बढ़ाई करता रहेगा। वास्तव में ऐसा व्यक्ति भी कोई समाज को सुख नहीं प्रदान करता। ये तो अभिमानी व्यक्ति है। अभिमानी व्यक्ति समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं संसार में, और हो सकता है दूसरे व्यक्ति उसकी महिमा कुछ घड़ियों के लिए तो सुन ले, लेकिन आगे चल करके कोई भी उसकी महिमा सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि साथ साथ जो औरों की निंदा वो करता है ये असहनीय हो जाता है। अब तीसरे प्रकार की वृत्ति वाले हैं जो अपनी निंदा ही करते रहेंगे और औरों की महिमा ही करते रहेंगे, ये है हीनता की भावना। और हीनता की भावना लाकर ईर्ष्या ही करते रहेंगे, लेकिन ईर्ष्या के अंतर्गत एक अच्छी बात होगी, वो उसकी दूसरों की महिमा तो करेंगे भले अपनी वो निंदा करेंगे, तो महिमा करते समय अंदर में सुख की अनुभूति नहीं होगी लेकिन ईर्ष्या की अनुभूति होगी, क्योंकि खुद की निंदा ही कर रहे हैं। तो हीनता की भावना में श्रेष्ठ संकल्प कभी नहीं आते हैं। वास्तव में ऐसा व्यक्ति कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, उसके बोल अच्छे लगेंगे क्योंकि वह औरों की महिमा तो कर रहा है, परंतु थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति के शब्द भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी वो बुराई करता रहता, इससे भी वो किसी को सुख नहीं दे सकता। लेकिन चौथा प्रकार का व्यक्ति है जो औरों के लिए महिमा करेगा लेकिन स्वयं अपने लिए भी स्वमान रखेगा, अपने लिए हीनता की भावना नहीं रखेगा और सबके लिए श्रेष्ठ दृष्टि अपनाएगा। वास्तव में ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति ही हर्षित रह सकता है। तो अगर हम जीवन में हर परिस्थिति में हर्षित रहना चाहते हैं तो हमें सबके गुण देखने हैं, और सबके गुण देखने के साथ साथ अपनी भी गुण देखने हैं, क्योंकि मैं भी भगवान की श्रेष्ठ रचना हूं। मुझे भगवान ने पैदा किया देवत्व स्थिति का अनुभव कराने के लिए। मैं ईश्वर की सर्वोत्तम रचना हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस चिंतन के माध्यम से हम अन्य के प्रति भी यही चिंतन कर सकते हैं कि वो भी वास्तव में अपने असली स्वरूप में तो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन इस समय क्योंकि वह अज्ञान के वश है इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। लेकिन यह अज्ञान का व्यवहार भी सदा काल नहीं चलेगा, आखिर उसे भी एक दिन रियलाइजेशन होगी, लेकिन समय लगेगा। तो थोड़ा सा धीरज धारण करना होगा, अपने आप उसे रियलाइजेशन आ ही जाएगी। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है और मैं भी उसे क्रोध कर लूं, तो वह व्यक्ति तो कभी सुधरेगा नहीं, नहीं वह समझेगा। लेकिन मुझे शांत रहना चाहिए, उसे भी शांत बना रखना चाहिए, और जब वो शांत हो जाए तब अपनी बात उसे देनी चाहिए। लेकिन हम अपनी स्थिति से नीचे न आए, हम अपने आप को सदा ही हर्षित रखें। अगर कोई बुरा भला कहता भी है तो भी हम अपने आप से पूछें कि वह कहां लगा। इस पर एक कहानी याद आती है, महात्मा बुद्ध की कहानी है, कि एक बार एक व्यक्ति उनके सामने गया और बहुत सी गालियां उन्हें देने लगा, बहुत बुरा भला उसे कहता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत मुद्रा में टस से मस नहीं हुए, अपने हर्षित मुख स्थिति को उसने बनाए रखा। और एक घंटे तक बुरी बातें सुनने के बाद जब वो व्यक्ति कहते हुए आखिर तो थक ही जाएगा, और फिर जब वो शांत हो गया तो महात्मा बुद्ध ने बहुत प्यार से एक सरल प्रश्न उससे पूछा कि देखिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो वो वस्तु किसके पास रही। तो इस गुस्से वाले व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, ये भी कोई प्रश्न है, अवश्य जो देने की कोशिश कर रहा था उसी के पास रही। तो महात्मा बुद्ध ने उसी समय शांत मुद्रा में कहा, आप ही जो कुछ मुझे देना चाहते थे मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बस वह व्यक्ति समझ गया और उसको महसूसता हुई कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता दिखाई, ये व्यक्ति तो कितना महान है और मैंने इसके प्रति ऐसे सोचा। तो देखिए ये है सही शक्ति की कमाल, ये है हर्षित मुख स्थिति की कमाल। तो अगर हम अपने अंदर हर्षित रहेंगे, सहनशील रहेंगे, तो समय अवश्य आएगा जब वह व्यक्ति बदल जाएगा। हम ये कभी नहीं सोचें कि हम उसको बदल सकेंगे, वो अपने आप बदलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज हम नहीं समझते कई बार, क्योंकि देह अभिमान में आकर के हम अंदर में ये सोचते हैं कि मैं उसको बदलूंगा। देखना, मैं बदला ले करके उसको बदलूंगा, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं 19 हूं तो वो 20 है, मैं शेर हूं तो वो 125 है, मैं कुछ अपनी शक्ति दिखाऊंगी तो वो अपनी डबल शक्ति दिखाएगा। और जहां नेगेटिव शक्ति काम करेगी, सोचिए उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, क्या उसे समाज को सुख मिलेगा, क्या समाज में शांति आएगी। तो अगर हम सुख और शांति की कामना समाज के अंदर करते हैं,
तो अवश्य इसके लिए पहले सुख और शांति की अनुभूति हमको अपने अंदर में करनी होगी और दूसरे के प्रति भी सुख और शांति के वाइब्रेशंस फैलाने होंगे। इसके लिए सहनशील बनना होगा, हर्षित मुख बनना होगा, हर परिस्थिति में हर्षित मुख। ऐसे नहीं कि मान मिला तो हर्षित हुए, वास्तव में मान हो चाहे अपमान हो, दोनों परिस्थितियों में हर्षित मुख। क्योंकि अगर मेरी कोई महिमा करता है तो वास्तव में मुझे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इतना महिमा योग्य किसने बनाया? मेरे माता पिता ने बनाया, मेरे शिक्षक ने बनाया, मेरे गुरु ने बनाया, अथवा जिस व्यक्ति ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे समझ दी, मुझे इतनी ऊंची स्थिति तक वो लाया, वास्तव में महिमा के योग्य तो वो है, क्योंकि उसने मुझे इतना ऊंचा बनाया। और उनसे भी बढ़कर भगवान महिमा के योग्य है। अर्थात हम ये सोचें कि अगर उसने मेरी महिमा की तो ये इनडायरेक्टली ईश्वर की महिमा है, परंतु अगर वह मेरी निंदा करता है तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं मेरी क्या निंदा की, इसने तो अपना ही मुख खराब किया, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। और अगर निंदा की भी तो ये भी तो भगवान की उसने इंसल्ट की, क्योंकि मैं तो भगवान का बच्चा हूं। अगर भगवान के बच्चे की या भगवान की रचना की महिमा, तो जैसे भगवान की महिमा, क्योंकि रचना की महिमा अर्थात रचयिता की महिमा। जैसे किसी बच्चे की हम महिमा करते हैं तो हम अवश्य पूछेंगे किसका बच्चा है, अर्थात बच्चे की महिमा माना इनडायरेक्टली उसके पिता की महिमा, क्योंकि उसके पिता ने उसको ऐसे ऊंचा बनाया। और अगर बच्चे की निंदा है तो इनडायरेक्टली उसके पिता की निंदा है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी पिता अपने बच्चे की कभी भी निंदा नहीं करेगा, चाहे उसका बच्चा कितना भी नालायक क्यों न हो, बुरा क्यों न हो, लेकिन पिता अपने बच्चे की कमियों को भी अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि वह जानता है कि मेरे बच्चे की निंदा माना मेरी निंदा। आखिर उसको इस प्रकार बनाया किसने? पिता ने। तो अगर कोई व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, माने ये भगवान की निंदा कर रहा, अपना ही पाप बना रहा है, तो उस आत्मा के प्रति भी मैं शुभ भावना शुभ कामना रख करके उसको ठंडा जल देती रहूं तो अवश्य वो व्यक्ति बदल जाएगा। तो हर परिस्थिति में हर्षित मुख। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, अब बीमारी में हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, हाय मेरे कर्म, हाय मैंने ये क्या किया, हे भगवान ये तुमने क्या किया मेरे साथ। तो बीमारी के समय भी हर्षित मुख स्थिति रहे, उस समय हम ये सोचे कि ये देह या शरीर को रोग लगा, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं आत्मा तो शुद्ध हूं, शक्तिशाली हूं, पवित्र हूं, शांत हूं। तो इस संकल्प के आधार से हम देह को अपने से न्यारा करेंगे और खुद को एक शक्तिशाली आत्मा महसूस करेंगे, तो मुख भी हमारा हर्षित रहेगा। तो इसी प्रकार अंतर में हम ये सोचें कि आत्मा शक्तिशाली है, चाहे ये देह निर्बल क्यों नहीं है, ये तो भगवान की अमानत है। जैसे किसी की अमानत आपके पास रखी हुई हो तो आपकी उसमें आसक्ति नहीं होगी, आपका उसमें मोह भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको प्यार से संभालेंगे। अगर महंगी चीज होगी तो भी प्यार से संभालेंगे, सस्ती चीज होगी तो भी प्यार से संभालेंगे, क्योंकि वो अमानत है। तो ये शरीर भी प्रभु की अमानत है। हम भगवान से यही कहते हैं, प्रभु ये तन ये मन ये धन सब तेरा है, तेरा ही तुझको अर्पण है। तो ये तन भी प्रभु की अमानत है। अब प्रभु की अमानत समझ करके हम उसको सौंप रहे हैं और मैं आत्मा भी प्रभु की अमानत हूं, तो दुखी क्यों हूं? अगर ये शरीर का रोग है भी तो भी हम ये सोचते हैं कि ये कोई कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है और एक न एक दिन ये हिसाब किताब चुकतू हो ही जाएगा। कई बार रोगी व्यक्ति को मृत्यु का भय लगता है। आज इतने खतरनाक रोग संसार में फैलते जा रहे हैं और इनका कभी कभी इलाज भी असंभव हो जाता है और रोगी को यही कहा जाता है कि अब तो मृत्यु ही आपका सहारा है। तो अगर यही समाचार किसी रोगी को मिल जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। He should accept death with love and respect, क्योंकि आखिर तो एक दिन सबको मरना है। कोई भी व्यक्ति सदा ही जिंदा नहीं रह सकता। इतने राजाएं इस संसार में हो गए, बहुत आए, कई आए, लेकिन सबको एक दिन जाना है। तो जबकि सबको जाना ही है तो मृत्यु को भी हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वास्तव में मैं तो कभी नहीं मरता। मैं तो एक आत्मा हूं और आत्मा अविनाशी हूं, इसीलिए मृत्यु के भय से भी योगी ऊपर उठ जाता है। वास्तव में मृत्यु का भय क्यों होता है? अगर देखा जाए, कोई सोचे तो कई प्रकार के कारण हैं। पहला कारण है कि हम समझते हैं मैं मरता हूं, लेकिन जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला तो अनुभूति होती है कि मैं तो कभी नहीं मरता। दूसरी बात, मृत्यु का डर इसीलिए लगता है क्योंकि जो जीवन में पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म हमें दुख देते हैं, साथ साथ डर पैदा कराते हैं कि शायद ये जो पाप हुए हैं इनसे मुझे सजा मिलेगी, पता नहीं आगे चल करके क्या कष्ट होगा। तो मृत्यु का डर बैठ जाता है। कई बार भविष्य की चिंता हमें घेर लेती है, इसीलिए भी मृत्यु का डर लगता है। पता नहीं कहाँ जाऊंगा, पता नहीं क्या मुझे कष्ट मिलेंगे, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। तो भविष्य का अज्ञान ये मनुष्य को मृत्यु से डराता है और कभी कभी अकेलापन इससे बहुत डर लगता है। इंसान सोचता है मैं अकेला हूं, क्योंकि उसे अकेले ही जाना है इस अंतिम यात्रा पर, उसके साथ कोई भी नहीं आएगा। तो क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझता है इसीलिए भी उसे डर लगता है। वास्तव में कभी भी हम अपने आप को अकेला नहीं समझे, चाहे शरीर से हम अकेले हो, हम किसी स्थान पर रह रहे हैं अकेले रहते हैं, लेकिन उस समय भी अगर हम योगी के रूप में हैं तो परमात्मा तो मेरा साथी है ही है, मैं अकेला कहाँ हूं। तो जब अपने आप को परमात्मा के साथ अनुभव करेंगे तो मृत्यु का डर सदा के लिए खत्म हो जाएगा और हम अपने आप को बहुत हर्षित बना सकेंगे। हर्षित व्यक्ति सदा प्यारा लगता है। अगर कोई व्यक्ति मुरझाया हुआ है तो उसका चेहरा भी कभी प्यारा नहीं लगता, लेकिन हर्षित मुख व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को भी सुख प्रदान कर सकता है। चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी दुखी हो, लेकिन वह हर्षित व्यक्ति को देखते ही शांति की अनुभूति करने लगता है, सुख का अनुभव करने लगता है।